ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सदन को प्रभावकारी और परिणामुखी बनाने के विषय में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतक और सचेतकों के साथ विचार विमर्श। कर्णाली प्रदेश में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मंगल बहादुर शाही मुख्यमंत्री पद पर हुए नियुक्त। लुम्बिनी प्रदेश में नेपाली कांग्रेस ने सरकार को दिया हुआ अपना समर्थन लिया वापस। स्वास्थ्य सेवा में अवरोध न करने का स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने किया आग्रह। और जापान के क्यूशू टापू में शक्तिशाली भूकंप, कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने प्रतिनिधि सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ संसद को प्रभावी, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने के विषय में चर्चा की। बैठक में 30 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिनिधि सभा सत्र को प्रभावी और परिणामुखी बनाने, सरकार से पर्याप्त विधायी कार्य उपलब्ध कराए तथा सदन की गरिमा बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। संसदीय सुनवाई समिति ने आज निर्वाचन आयुक्त पद के लिए प्रस्तावित गुरुप्रसाद वागले और डॉ राजीव सुब्बा की अलग अलग सुनवाई की। गुरुप्रसाद वागले ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों के साथ समन्वय और संवाद को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने संविधान, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, विधि के शासन और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने निर्वाचन आयोग को सक्षम, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पेशेवर और विश्वसनीय संस्था के रूप में विकसित करने तथा चुनाव प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और किफायती बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जन्म, मृत्यु, विवाह और बसाई सराय के अभिलेख मतदाता सूची से डिजिटल रूप से जुड़े नहीं होने के कारण मतदाता सूची वास्तविक संख्या से बड़ी हो गई है। प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डॉ राजीव सुब्बा ने कहा कि वे संविधान और कानून का पूर्ण पालन करते हुए तथ्य, प्रमाण और विधि के शासन के आधार पर निर्णय लेंगे। समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ ने बताया कि समिति बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद के लिए अनुशंसित मान बहादुर कार्की की संसदीय सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि संवैधानिक परिषद ने 3 जुलाई को मान बहादुर कार्की को मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा डॉ राजीव सुब्बा और गुरुप्रसाद वागले को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सुनसरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन कार्यालय ने पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग तथा इनरुआ बाजार क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। स्थानीय प्रशासन अधिनियम 2028 के तहत आज दोपहर 3:30 से अगली सूचना तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्य जिला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू क्षेत्र में आम नागरिकों की आवाजाही तथा किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक और घेराव पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने सुनसरी सहित पूर्वी जिलों में हाल ही में हुई संवेदनशील और दुखद घटना तथा उससे उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के प्रति अपना गंभीर ध्यानाकर्षण जनाया है। पार्टी सभापति रवि लामिछाने द्वारा जारी विज्ञप्ति में घटना में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही घटना में घायल हुए सभी नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दल के नेता मंगल बहादुर शाही को कर्णाली प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी ने संविधान के अनुच्छेद 168 के 2 के तहत उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रदेश प्रमुख कार्यालय की सूचना अधिकारी मनमाया काउजा ने उसकी जानकारी दी। शाही ने आज शाम 5 बजे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के समर्थन से सरकार गठन का दावा पेश किया था। उनका शपथ ग्रहण बुधवार को होगा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार से नेपाली कांग्रेस बाहर हो गई है। सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस के 5 मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल की सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठ ने मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य को समर्थन वापसी का पत्र और मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे सौंपे। इस्तीफा देने वालों में शहरी विकास एवं पेयजल मंत्री सरोज थापा, आर्थिक मामलों एवं योजना मंत्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग पर्यटन एवं परिवहन मंत्री प्रचंड विक्रम न्यूपाने, सामाजिक विकास मंत्री जन्मजय तिमल सिन्हा तथा वन एवं वातावरण मंत्री देवकरण प्रसाद कलवार शामिल है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने लोकतांत्रिक आन्दोलन के योद्धा एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री गोपाल मान श्रेष्ठ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना और पुनर्स्थापना के संघर्ष में श्रेष्ठ का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस बीच नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने भी वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ के निधन पर शोक व्यक्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के पूर्व सभापति शेर बहादुर देवा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। नेपाली कांग्रेस के नेता गोपाल मान श्रेष्ठ का आज 79 वर्ष की आयु में जावलाखेल स्थित हेलियस अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील सेवा में किसी भी प्रकार का अवरोध न पैदा करने की अपील की है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आज आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रखने की घोषणा के बाद मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ समीर कुमार अधिकारी ने यह अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अस्पताल अपनी सामाजिक और पेशेवर जिम्मेदारी निभाएं। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि सरकार गैर आवासीय नेपाली एनआरएन समुदाय के ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी और पूंजी को देश के विकास से जोड़ने के लिए नीतिगत, कानूनी और व्यवहारिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। आज सूचना एवं संचार मंत्रालय में गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने कहा कि सरकार देश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ा रही है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय ने नेपाल कानून आयोग N2063 में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने सोमवार को एक सूचना जारी करते हुए मंत्रालय द्वारा संचालित सुझाव पोर्टल के माध्यम से प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपनी राय और सुझाव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मंत्रालय के अनुसार विधेयक को अधिक समावेशी, प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से नागरिकों तथा संबंधित पक्षों की सहभागिता के साथ सुझाव संकलन किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्यूयूसु द्वीप के कुमामोतो क्षेत्र में मंगलवार को शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कुछ स्थानों पर लोग मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में कुमामोतो प्रांत का कसीमा शहर शामिल है, जहां एक बड़े शॉपिंग सेंटर का एक हिस्सा ढह गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार वहां कई कर्मचारियों और लोग फंसे हो सकते हैं, जिनके लिए बचाव अभियान जारी है। भूकंप के बाद कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित, आग लगने की घटनाएं और सड़कों, पुलों तथा अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई है। लगभग 48,000 घरों में बिजली कटौती की सूचना दी गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सदन को प्रभावकारी और परिणाममुखी बनाने के विषय में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतक और सचेतकों के साथ विचार विमर्श। कर्णाली प्रदेश में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मंगल बहादुर शाही मुख्यमंत्री पद पर हुए नियुक्त। लुम्बिनी प्रदेश में नेपाली कांग्रेस ने सरकार को दिया हुआ अपना समर्थन लिया वापस। स्वास्थ्य सेवा में अवरोध न करने का स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने किया आग्रह। और जापान के क्यूसू टापू में शक्तिशाली भूकंप, कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।